ओम शांति। भट्टी करते करते आज हमारा पांचवां दिन है। थक तो नहीं गए सुन सुन करके? कितनी बातें सुनते हैं ना, याद कितनी रहेंगी? सुना तो इतना ढेर, याद कितना रहेगा हैं? कितना याद रहेगा? इतना सा। और धारण कितना होगा? धारण कितना करेंगे? जब याद ही इतना सा रहेगा तो धारण कितना करेंगे? फिर इतना सा। आज का अपना विषय बड़ा ही सुंदर है। मैं कभी कभी सोचा भी करती हूं कि हम जहां बैठे हैं, जहां हम सब आते हैं, इसका नाम है प्रजा पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो जब कभी मैं बहुत बुजुर्ग माताओं को देखती हूं, भाइयों को देखती हूं, तो कभी कभी तो मन होता है कि इनसे पूछें कि आप कहां आते हो, आपको इस संस्था का, इस स्थान का, इस सत्संग का पूरा नाम मालूम है? आप कहां आए हैं इसका पूरा नाम मालूम है? जिनको नाम मालूम है वो हाथ उठाओ। आप कहां आए हैं जिनको नाम मालूम है? आप कहां रोज आते? हाथ उठाओ, देखें तो सही। देखो कम हाथ उठते हैं, हमें अपना नाम भी कम याद होता है। हाँ, अपना पूरा नाम है प्रजा पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। जो बुजुर्ग माताएं हैं उनको याद है? यंग को तो याद है, बुजुर्ग माताएं भले कोई कोई पीछे बैठे होंगे, हाथ उठाओ, याद है नाम? क्योंकि हमारी ब्राह्मणों की भाषा तो ये है, कोई पूछेगा कहाँ जा रहे हैं, कहेंगे बाबा के घर में, भगवान के घर में, बाबा से मिलने। कितना हमने देखा है हमारे जो बुजुर्ग भाई बहन है इनको बहुत खुशी होती है। क्लास में अनाउंस करो मधुबन में प्रोग्राम है, तो आके एक एक कहेगा दीदी हमें मधुबन जरूर भेजना, शांतिवन जरूर भेजना, बाबा के घर जरूर भेजना। विचार करें, आपने भी कई संस्थाएं देखी होंगी, हमने भी कई संस्थाएं देखी हैं, कईयों में जाने का मौका मिलता है। कई संस्थाओं में उन लोगों की प्रधानता है जो बहुत पैसे वाले हैं, और कई संस्थाओं में उन लोगों की प्रधानता है जो बहुत पढ़े लिखे हैं। आप वहां जाके देखो उन लोगों का उठना बैठना रहना बोलना। भारतवासी होते हुए भी मैंने देखा है ऐसी संस्थाओं में इंग्लिश भाषी लोग हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं, बातचीत करने का उनका तरीका अंग्रेजी में है, चलना फिरना। और उनका लक्ष्य क्या है? बहुत साधारण, जीवन में एक गुरु होने चाहिए गुरु हैं। साल में एक बार, कोई दो साल में, तीन साल में एक बार, आठ दिन दस दिन के लिए जाते हैं अपने हेडक्वार्टर्स में, और वहां का जो नियम होगा, वेद शास्त्र पढ़ना, रामायण पढ़ना, कोई अन्य अन्य प्रकार का योग सीखना, वो लोग 10 दिन 15 दिन रह करके सीखते हैं। लेकिन इतनी बड़ी गैदरिंग हो, इतने सब लोग इकट्ठा रहें, किसी ने ऐसी संस्था देखी है? हाथ उठाओ। तो मैं समझती हूं पूरे विश्व में ऐसी संस्था नहीं है। केवल बाबा का घर है, इसको भी दुनिया वाले चाहे संस्था कहें, हम तो क्या कहते हैं, ये बाबा का घर है। आप आते हैं तो आपको लगता है ना, ये हमारा घर है, ये हमारा घर भी है। और ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी है। साथ ही साथ ये सत्संग भी है। घर है तो यहां डिवाइन फैमिली, दैवी परिवार, इसलिए हम सबका संबोधन भी क्या है, भाई जी और बहन जी, यही है ना, एक दूसरे को यही कहते हो ना, बहन जी और भाई जी, किसी भी भाषा में बोलेंगे। भाषा हमारे यहां अपनी अपनी है, जो जिस प्रांत से आते हैं। और बाबा की भाषा तो हिंदी है। कई बार कई कहते बाबा इंग्लिश क्यों नहीं बोलता, बाबा ये, बाबा ने कहा बच्चे बाबा तो एक ही भाषा बोलेगा, वही भाषा बोलेगा जो रथ की भाषा है। रथ तो चाहे सिंध हैदराबाद से था, लेकिन बाबा ने उसमें भी हिंदी भाषा का आकर प्रयोग किया। हमारी दादियां जिनको हिंदी नहीं भी आती थी, सबने हिंदी को सीखा और हिंदी को अपनाया, क्योंकि भारतवर्ष की जन भाषा अधिकतर तो हिंदी है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है। देखने में इतना ये साधारण है, लेकिन विशेषता हमारे विद्यालय की, बाबा ने माताओं बहनों को आगे रखा। ड्रामा अनुसार आपकी भट्टी में एक छोटा सा बाहर का भी फंक्शन हुआ, जो उस दिन कुछ नेताएं आए थे, कोई कमेटी के कुछ लोग आए थे, वो लोग भी आपस में बार बार यही चर्चा कर रहे थे। मैं उनके साथ यहां मंच पर थी, इतनी माताएं, इतनी माताएं। और वो जो उनके साथ एक बहन थी रेणुका चौधरी, बार बार कह रही थी हमें तो सावधान होना पड़ेगा, इतनी माताएं। और वो लोग देखकर हैरान होते हैं, इतनी माताएं एक जैसी यूनिफॉर्म में, इतनी डिसिप्लिन्ड, दुनिया में ऐसा सत्संग कहीं नहीं है। इतना बड़ा सत्संग ना कभी कहीं हुआ है और ना कहीं होगा, जहां लक्ष्य भी महान दिया गया है। हमारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है, मनुष्य से देवता बनना, नर श्री नारायण, नारी श्री लक्ष्मी बने। इतने ऊंच महान लक्ष्य को पाने के लिए बाबा ने हम बच्चों को चार सब्जेक्ट्स, चार विषय दिए हैं। यूं तो आज के विषय में बहुत सी बातें हैं, समय की सीमा देखते हुए सब बातें नहीं ले पाएंगे। दुनियावी रूप में तो आपको मालूम है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कितने सालों बाद पहुंचते हैं। पहले प्राइमरी स्कूल है, मिडल है, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी। हालांकि उस यूनिवर्सिटी में जो यूनिवर्सिटी लिखते हैं और हमारा जो विश्वविद्यालय, इसमें अंतर है, अर्थ भी फर्क है। वो तो केवल यूनिवर्सिटी लिखते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, लेकिन उसी स्टेट के लोग वहां पढ़ते हैं। अब हमारा लीगली तो अलग अलग है, विश्व विद्यालय, पूरे विश्व के लिए ये विद्यालय है जहां हर भाषा भाषी लोग आते हैं। पूरे विश्व की आत्माएं, हर देश हर शहर की आत्माएं यहां आती हैं, इस ज्ञान और योग को सीखती हैं। और बाबा हम बच्चों को चार सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। हमारे सब्जेक्ट ये कंप्लीट नहीं, पूरा नाम है सहज ज्ञान, सहज राज योग, दैवी गुणों की धारणा, ईश्वरीय सेवा। जल्दी जल्दी में भले हम कह देते हैं ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, लेकिन ज्ञान, सहज ज्ञान, सहज योग। अब ये चारों जो विषय हैं, बाबा शिव बाबा निराकार पढ़ाने वाला है और एक मुरली चलती है और उसमें ये चारों ही सब्जेक्ट्स बाबा पढ़ाते हैं। तो क्या हम बाबा के बच्चे इस प्रकार से बात को समझते हैं? ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान माना है समझ, नॉलेज। योग माना है बुद्धि का कनेक्शन, याद, भगवान से प्रीत। जब ज्ञान को हम समझ लेते हैं और हमारी प्रीत उस परमात्मा से होती है, तो हमारा तीसरा सब्जेक्ट दैवी गुणों की धारणा स्वतः ही पूरा होता जाता है, उसकी शक्ति हमारे में आती है। और जब तीनों सब्जेक्ट पर हमारा ध्यान है, तब हमारा चौथा सब्जेक्ट ईश्वरीय सेवा प्रैक्टिकल में होता है। जैसे स्कूल में भी पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल अलग अलग है। ईश्वरीय सेवा हमारा प्रैक्टिकल है। ज्ञान योग हमारी थ्योरी है, धारणा थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है, और ईश्वरीय सेवा टोटल प्रैक्टिकल है। आज बाबा ने वरदान में कहा, नॉलेज इज माइट, नॉलेज इज लाइट। दुनिया में भी समझते हैं कि जो ज्ञान है यही मनुष्य को शक्ति देता है, मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य को रोशनी मिलती है, ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य की उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो उस दुनिया में तो अनेक प्रकार की पढ़ाइयां हैं। आजकल तो बहुत ही अधिक स्ट्रीम्स, शाखाएं, उप शाखाएं बन गई हैं। आप डॉक्टर को ही लीजिए, किसी जमाने में हमारे यहाँ केवल एक नाड़ी वैद हुआ करते थे, कहते हैं उसको कुछ बताते नहीं थे, बस यूं ही हाथ रख के देख के कहता था आपको ये तकलीफ है। और आजकल तो हम सबको अनुभव है, कोई भी बीमारी हो तो कितने प्रकार के हमारे टेस्ट हो जाते हैं। आंख भी चेक करानी हो तो आंख का नंबर देने वाला अलग डॉक्टर है, और अगर आंख में कोई तकलीफ है वो रेटिना का अलग डॉक्टर है। हर अंग प्रत्यंग का अलग अलग डॉक्टर्स है। ऐसे ही आप चाहे इंजीनियर देख लो, सिविल अलग है, मैकेनिकल अलग है, आर्किटेक्ट अलग है। जैसे जैसे मनुष्य की बुद्धि का भटकाव होता है तो हर चीज अलग 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 होती जाती है। बाबा हमें ऐसी ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना, विचार करना। सत्युग में देवी देवताओं का राज्य होगा, क्या वहां पर देवताओं को, जैसे बाबा कई बार पूछते हैं लक्ष्मी नारायण को, सीताराम को, कोई मंत्री होंगे, सेक्रेटरी होंगे जो राय देंगे? बाबा हमारी जड़ से बीमारी को ठीक करते हैं, ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हमारा मन और बुद्धि का विकास हो जाता है, तो सत्युग त्रेता में किसी भी प्रकार की मंत्रणा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, कंट्रोल करने के लिए पुलिस की आवश्यकता नहीं रह जाती है, वहां कोई पाप कर्म करेंगे ही नहीं। आज की दुनिया में तो कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता है कि ऐसी भी दुनिया, ऐसी भी पढ़ाई हो सकती है। और द्वापर युग से जब आत्मा की शक्ति कम होने लगती है तो राजाएं भी हैं और राजाओं के साथ साथ मंत्री भी हैं, सेक्रेटरीज भी हैं, और कलयुग के अंत में पहुंचते पहुंचते तो क्या हाल हो गया है। आज राजाएं तो है ही नहीं और मंत्री ही मंत्री हैं, ऐसा है ना? राजा है क्या कोई? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री हैं। अब इन सब की लगाम किसके पास है? घोड़े की लगाम किसी के पास नहीं, सब बेलगाम है। इसलिए आप देखो दुनिया में आज क्या है, चारों ओर भ्रष्टाचार, दुख, अशांति। तो पहली बात कि बाबा हमें जो इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, क्या हमें लगता है ये पढ़ाई इतनी ऊंची है? क्या हमने इस पढ़ाई के महत्व को समझा है? मुरली कोई साधारण चीज नहीं है। जैसे दादी सवेरे मुरली सुनाते हैं ना, कहते हैं दादी कई बार कि पता नहीं आपको कितनी समझ आ रही है। बाबा कई बार कहते हैं बच्चे तुम तो डायरेक्ट सुन रहे हो, कैसे निराकार पढ़ा रहा है, कैसे साकार द्वारा पढ़ा रहा है, कैसे सत्युगी दुनिया की स्थापना हो रही है। किसी को बताओ तो सही कि सत्युग की स्थापना योग बल द्वारा, साइलेंस पावर के द्वारा हो रही है। आप कहेंगे हम सत्युगी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, नव विश्व निर्माण कर रहे हैं, यही कर रहे हो ना, यही कर रहे हो ना? आप में से कितनी माताएं बहनें इंजीनियर हैं, जरा हाथ तो उठाओ। होंगी कोई इंजीनियर? कोई नहीं है, खड़े हो जाओ अगर है कोई तो। देखो कोई नहीं है, सत्युग की है, दो, तीन, और कोई पीछे, चार, चलो चार पांच इंजीनियर बैठ जाइए। 10,000 की सभा में 5 इंजीनियर, तो इंजीनियर साहब आप ही बता दीजिए कितनी रेशो हुई, कितना परसेंट हुआ। नई दुनिया का निर्माण हो रहा है, लेकिन आज गवर्नमेंट एक फ्लाईओवर बनाती है, कितने प्रकार के इंजीनियर मजदूर वहां लगे हुए होते हैं, और कई बार तो वो जो ब्रिज बनाते हैं बनाते बनाते ही गिर जाते हैं, कहते हैं फिर दुहाई मचाते हैं, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, हाँ सीमेंट नहीं डाला, ये नहीं किया, इंजीनियर पैसा खा गया, ठेकेदार खा गया, घोटाला ही घोटाला। और सत्युगी दुनिया की स्थापना में कितने घोटाले हैं कोई बता सकता है? बता सकता है? क्यों नहीं? क्योंकि बाबा ने पहले ही फाउंडेशन डाला है बच्चे नई सत्युगी दुनिया की स्थापना के लिए, मन वाणी कर्म से पवित्रता चाहिए। सत्युग में कौन होंगे? संपूर्ण निर्विकारी, जिनकी धारणा थोड़ी ढीली होती है तो उनका मन खाता है ना, कहते हैं ना, कई बार हमने देखा है कई आके पूछते हैं बहन जी हमारे नियम इतने पक्के नहीं होते हैं, तो देखो भगवान की जो कहते हैं ना तुमरी गतमत तुम ही जानो और ना जाने कोई, सत्युगी दुनिया की स्थापना कैसे होगी? कैसे होगी? पवित्रता के बल से। तो बाबा ज्ञान सागर हमें पहले ज्ञान देता है, बच्चे मैं किस लिए आया हूं, मुझे याद तो करो, पावन तो बनो। किस लिए बनो? क्योंकि पावन दुनिया में, नई सत्युगी दुनिया में चलना है। तो हमें क्या याद रहना चाहिए? ज्ञान वो चीज है जो हमारी स्मृति को श्रेष्ठ शुद्ध और पक्का बनाती है। अब हमारी स्मृति में क्या है? बाबा ज्ञान दे रहे हैं नई सत्युगी दुनिया में चलना है, तो ये नशा हमारे अंदर होना चाहिए। केवल सिंपली मुरली सुननी नहीं है, लिखनी नहीं है, लेकिन सुनते हुए लिखने से पहले बाबा जो कह रहे हैं वो नशा चढ़ना चाहिए। और नशा तब होता है जब हमारे अंदर निश्चय है, एक एक बात में निश्चय चाहिए। बाबा ने तो हमें खुशखबरी दी है कि बच्चे तुम आत्माएं 84 लाख जन्म लेंगे, लेंगे 84 लाख योनियां नहीं, केवल 84 जन्म, वो भी मनुष्य मनुष्य रूप में। सोचिए दुनिया का कितना बड़ा भ्रम ज्ञान सागर बाबा ने आकर मिटा दिया, और कितनी सहजता से। तो जब मनुष्य को मनुष्य ही बनना है और सत्युग में दैवी गुण वाले मनुष्य होंगे, तो मेरे अंदर ये खुशी ये नशा आए, वाह बाबा आप मुझे देवता बनाने आए हैं। किस किस को ये खुशी रहती है? हाँ अलर्ट होके बैठो थोड़ा भाई, सुस्त ना बैठो, थोड़ा कुर्सी को छोड़ के बैठो ना। तो ये नशा चढ़ाना जरूरी है। ज्ञान और योग की समझ होना केवल जरूरी नहीं है कि ठीक है, हाँ कई ऐसे भी कहते ब्रह्मा कुमारियां आते हैं रोज, मुरली सुनेंगे रोज, कहते हैं हमारे बाबा ने या ब्रह्मा कुमारियां ऐसे कहती हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियों में नहीं जाता है। भाई आपको निश्चय है या नहीं है? खाली ब्रह्मा कुमारियां नहीं कहती हैं, लेकिन निश्चय से कहना कि भगवान ने हमें कितना बड़ा ज्ञान दिया है, चाहे कोई वेद शास्त्र पढ़ा लिखा व्यक्ति क्यों ना आ जाए, उसको भी ये पता नहीं है कितनी बड़ी समझ बाबा ने दी है। बच्चे, मैं परम धाम का वासी हूं, कण कण में व्यापक नहीं हूं। तो हमारे बाबा ने ज्ञान की बहुत बहुत गहराई दी है, इसलिए मुरली पढ़ना माना केवल मैंने आज दिन में 4 बार मुरली पढ़ ली ये काफी नहीं है। 2 लाइन पढ़ के उसका अभ्यास करना। बाबा कहता है, बच्चे तुम शांति धाम में रहने वाली आत्मा हो, ये ज्ञान है। पहले हमें मालूम नहीं था हमारा घर कौन सा है, अब बाबा ने कहा बच्चे तुम कहां से आए हो, कहां से आए हैं, परम धाम से आए। तो मैं अभी 2 मिनट बैठ के देखूं परम धाम है कहां, कहां है भाई परम धाम, कहां है, अमेरिका में, लंदन में, कहां है, ऊपर इस छत से ऊपर, सूर्य चांद से पार। देखो जाती है बुद्धि, कहते 1 सेकंड में सूर्य चांद से पार, देखो पहुंचती है मेरी बुद्धि 1 सेकंड में, मैं सूर्य चांद से पार पहुंच गई जहां प्रकाश ही प्रकाश है। साइलेंस है, मैं आत्मा भी यहां एकदम शांत हूं। तो ये है ज्ञान, लाइट और माइट। माइट माना साथ साथ अभ्यास करना। हम दिन में 5 बार चाहे पूरी मुरली ना पढ़ें, केवल मुरली का सार, केवल मुरली के प्रश्न उत्तर, केवल मुरली में धारणा के पॉइंट, केवल मुरली में लिखा हुआ वरदान या स्लोगन पढ़ें, अभ्यास करें, पढ़ें, अभ्यास करें। बाबा कहता, बच्चे मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं, और ये बेहद की स्टेज है, ये सारा विश्व क्या है, और तुम आत्मा यहां एक्टर हो, महसूस करो मैं आत्मा एक्टर हूं, तो मेरी एक्ट कैसी होनी चाहिए, सुखदाई या दुखदाई, राम की या रावण की। बेहद का बाप है, कौन है बेहद का बाप, मैं बेहद के बाप के पास बैठी हुई मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं और उससे बेहद का खजाना ले रही हूं। ये है विधि ज्ञान योग को मनन करने की और अनुभव करने की। कई पूछते रहते हैं कैसे अनुभव करें, कैसे मनन करें, यह है विधि मनन करने की। 1 महावाक्य पढ़ें और उसका 15 मिनट, आधा घंटा कम से कम अभ्यास करें। साकार में बाबा थे, कई बार आप मुरलियों में भी पढ़ेंगे, बाबा कहते हैं बच्चे अमृत वेला उठकर लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे बैठो। तो क्या करेंगे चित्र के आगे बैठकर? कोई पूजा तो करेंगे नहीं। तो बाबा कहते थे, बच्चे देखो ये कैसे हैं और मैं कैसी हूं, इनमें क्या क्या गुण हैं। बहुत से भाई बहन कहते हैं अमृत वेला उठ के बैठते हैं नींद आती है, आप कॉपी पेन लेके बैठिए, लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रखिए, देखिए इनमें कौन कौन सा गुण है। फिर ये मत लिखना कि आप में कौन कौन सा अवगुण है, क्योंकि फिर आप अवगुण ही देखते रहेंगे। लेकिन फिर ये देखना इनमें ये गुण है और मुझे कौन कौन से गुण को धारण करना है। जिस जिस गुण को धारण करना है उसको टिक मार्क लगाओ और अपने पुरुषार्थ का प्लान बनाओ। पढ़ रहे हैं ना हम विद्यार्थी हैं ना, स्टूडेंट हैं, इस समय चार सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो ज्ञान मिला, लक्ष्मी नारायण बनना है, चित्र सामने रखा, उनमें क्या क्या गुण है, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, कितनी लंबी डिग्री है। सर्वगुण कौन से गुण है लिस्ट बनाओ, नहीं तो दिव्य गुणों वाली पुस्तक खरीद लेना, देखना उसमें कितने गुण बताए हुए हैं। यूं भी कहते हैं 36 गुणों वाली लक्ष्मी। मर्यादा पुरुषोत्तम, कौन कौन सी मर्यादाएं हैं। अहिंसा परमो धर्म क्या है, बैठ के उसका मनन करो, लिखो, फिर अपना चार्ट चेक करो, मैंने आज कोई हिंसा तो नहीं की, आंख से, जीभ से, कान से, हाथ से कुछ हिंसा तो नहीं की, वाणी से। मेरा आज सारा दिन का क्या प्रोग्राम है, कौन से शब्द मुझे बोलने हैं, केवल वरदानी बोल बोलने हैं, आशीर्वाद के बोल बोलने हैं, सुखदाई बोल बोलने हैं। हम एक प्लान बनाए, मैंने आज दिन में जो कुछ बोला उससे दूसरों को सुख मिला, फिर चाहे आपके घर में सर्वेंट है, चाहे आपका बेटा लेट आया, आपको तो सुखदाई बोलना है, आशीर्वाद ही देना है। लेट आया तो भी अच्छा आ गया, आओ खाना खाओ, घर में सर्वेंट है, नौकर है, चलो आज काम करने वाली देर से आई, ऐसे नहीं उसके ऊपर हम भाषण शुरू कर दें, तू तो लेट ही आती है, तेरा काम तो यही है, तेरा तो पैसा काटेंगे, नहीं, अच्छा आ गई, चलो गर्मी के दिन है, उसको भी ठंडा शरबत पिलाओ, आजा भाई तेरा इंतजार कर रही हूं मैं तो, चलो अब काम, शरबत पी लो और काम शुरू करो, तो उसको भी लगेगा देखो हमारी मालकिन कितनी अच्छी है। तो अपने अंदर हम सब भट्टी करने आए हैं, ये दृढ़ता लेके जाना है कि मेरी वाणी से किसी भी प्रकार का कष्ट किसी को भी ना हो। हो सकता है ये प्रतिज्ञा कर सकते हैं कि मेरी वाणी से किसी को भी कष्ट ना हो। आप देखेंगे जब मनुष्य मरता है, मैं हमेशा सुनाया करती हूं, अंतिम संस्कार कौन सा संस्कार है? बहुत से संस्कार है ना, जैसे बच्चा पैदा होता है तो नामकरण संस्कार है, कई संस्कार करते हैं ना, मृत्यु होने पर भी लास्ट संस्कार मुख अग्नि संस्कार। जब ले जाते हैं ना मुर्दे को तो आग कहाँ लगाते हैं, इतना लंबा चौड़ा शरीर है, कहते हैं ना कि भाई उसके बेटे ने मुख अग्नि दी, आग कहाँ लगाते हैं, यहां मुख में, कहीं भी लगा सकते थे शरीर में, यहां भी लगा सकते थे, यहां पांव में, कहीं भी नहीं, मुख अग्नि, क्योंकि ये मुख बहुत उल्टे सुलटे काम करता है। हवस होगी तो खाएगा भी ज्यादा, कहां से? निंदा चुगली का संस्कार होगा तो तेरी मेरी करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा। तो इस मुख से देखो हम कितने काम करते हैं। कभी एक दिन साक्षी होके देखना मेरा मुख क्या क्या कर रहा है। तो मालूम पड़ेगा इस एक छोटी है ये बहुत छोटी सी कर्म इंद्री। कहते हैं ये जीव तो 32 पहरेदारों के अंदर है, लेकिन है बड़ी चंचल, कब किसको क्या कह देगी और महाभारत शुरू हो जाएगा। तो ये हम बाबा के बच्चे पक्का करें। क्या पक्का करेंगे, क्या करेंगे? मुझे मीठा बोल, वरदानी बोल, आशीर्वाद का बोल, उमंग उत्साह बढ़ाने वाला बोल, सुख देने वाला बोल, आगे बढ़ाने वाला बोल ही बोलना है, सहयोग देने का बोल बोलना है। हम कुछ नहीं कर सकते इतना तो कहो आप बहुत अच्छे हैं, ये भी नहीं कह सकते। किसी ने हमारे लिए कुछ किया तो भाई थैंक्स, आपने बहुत अच्छा किया, तो हम कुछ मीठा तो बोले। तो ज्ञान को सुनना और फिर मुख से उसको मीठा बोलना, ये तब होगा जब हम साथ साथ अनुभव करेंगे, तो हमारी धारणा श्रेष्ठ हो जाएगी। जब धारणा श्रेष्ठ होगी तो हमारी सेवा क्या हो जाएगी? नहीं तो अभी कई बार लोग कह देते हैं ना, क्या कहते हैं, आप गुस्सा करेंगे, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे, कहेंगे आप तो योग लगाते हो ना, आप तो ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते हो ना, फिर आप गुस्सा करते हो। कहते हैं ना लोग, ऐसे कहते हैं। माना ये दुनिया वाले समझते हैं कि जो ज्ञान और योग सीखते हैं उनको गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये गुस्सा जाएगा कैसे? माताओं को अनुभव होगा। कई बार हम किचन में काम करते हैं, अगर कोई चीज जल जाती है, थोड़ा तला लग जाए किसी चीज का, फिर उस बर्तन को साफ करने में मेहनत होती है ना, रगड़ना पड़ता है ना। ऐसे ही हमारे जो संस्कार स्वभाव है, आप यहां भी देखिए, अगर किसी के अंदर सुस्ती का, आलस का संस्कार होगा ना, यूं उसको पूछो भाई तुम्हारी तबीयत ठीक है, कहेगा हाँ बिल्कुल ठीक है, पर बैठेगा कैसे, ऐसा सुस्ती, नींद नहीं आ रही है उसको भी, लेकिन आलस का संस्कार है। यहां क्लास में बैठे होंगे, मोबाइल की घंटी बजी, यहीं लग जाएंगे बात करने, साथ वाला चाहे डिस्टर्ब होता रहे कोई बात नहीं, तुम डिस्टर्ब हो जाओ मैं तो बात कर रही। तो ये हमारे संस्कार हैं। तो इन संस्कारों को क्या करना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, मांजना पड़ेगा। तो कैसे रगड़ना पड़ेगा, जब मुरली पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे। तो मुरली को पढ़ना कैसे है, सिर्फ रीडिंग नहीं लेनी है, ये कोई न्यूज़पेपर नहीं है, मुरली कोई कहानी की किताब नहीं है, मुरली में बहुत गहन ज्ञान है, जिसको सुन के हमारी बुद्धि के कपाट खुल जाते हैं। आप थोड़ा यहाँ से बाहर जाके किसी को कहिए तो सही कि हम सत्युगी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। कहेगा बस आप ही रह गए क्या सत्युगी दुनिया का निर्माण करने के लिए, या सुनने वाला सोचेगा इनके यहां कुछ फर्क आ गया है शायद। आप उनको कहिए भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने आया है। कहेगा अच्छा आप ही हो क्या देवता बनने के लिए, और दुनिया में भगवान को कोई नहीं मिला है या नहीं है। अच्छा साक्षी हो के स्वयं को देखो, देखो स्वयं को। दुनिया के हिसाब से तो हम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है ना। आप में से कोई आईएएस है, आईएएस पीसीएस आरएएस कुछ है? मैं समझती हूँ कोई नहीं होगा। टीचर प्रोफेसर तो होंगे, बहुत से सेंटर्स पर आते भी हैं डॉक्टर्स वगैरह, लेकिन वो थोड़ी इतना टाइम दे सकते हैं। तो हैं हम कितने साधारण, और नजर किसकी पड़ी हम पर, किसकी नजर पड़ी है? जिस पर भगवान की नजर पड़ी है उसको और किसी की नजर लग सकती है? माताओं बहनों के अंदर ये भी एक बहुत भ्रम रहता है, हमारा ज्ञान बहुत ऊंचा है, कहेगी आज ही मैं देखो नई साड़ी पहन के निकली थी ना, मैं निकली इसने पूछ लिया अच्छा तुमने ये नई ली है कहां से ली है कितने की ली, इसकी नजर लग गई। अब उसने तो 2 मिनट या 5 मिनट ही देख के पूछा था, उससे पहले तो मैंने 10 मिनट 15 मिनट लगा के वो साड़ी पहनी होगी, मेरी नजर क्यों नहीं लगी उसकी क्यों लग गई? क्योंकि मेरा ये निश्चय नहीं है मैं भगवान की नजरों में हूं। जब मैं भगवान की नजरों में हूं तो मुझे किसकी नजर लग सकती है? तो ये जो हम कई प्रकार के टोटके कहो टोने कहो इनमें भी फंसे रहते हैं, हमें बाबा ने इतना ऊंचा ज्ञान दिया है, बुरा नहीं मानना, बोलूं हमें 100% बाबा में निश्चय नहीं है, है 100% है? कोई कोई हाथ उठाते हैं 100%। अगर हमें 100% बाबा में निश्चय है तो हमारे मुख से तो अब केवल बाबा की बातें, बाबा का ज्ञान, काम करो खाना खाओ और बाबा 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 के गुण गाओ। समय तो तेजी से बदल रहा है, आपने 3-4 दिनों में बहुत से भाई बहनों की क्लासेस सुनी होंगी, विनाश के समय क्या होगा, विनाश में क्या क्या होगा। अव्यक्त बाबा की मुरलियां हैं, बच्चे तुम विनाश का इंतजार मत करो तो क्या करो, क्या करो, इंतजाम करो। जैसे बरसात आने वाली है ना, चाहे वो हमें जो वेदर ब्रॉडकास्ट करते हैं बता देते हैं इतनी तारीख से बारिश आएगी, 25 जून से बारिश राजस्थान में आएगी, पर मान लो वो 10 दिन लेट हो गई तो हम क्या सोचते हैं? ये नहीं सोचते बारिश लेट क्यों है, लेकिन ये सोचते हैं कि बारिश से पहले पहले भाई मेरे घर की छत टपकती है तो इसको ठीक करवा लो, या जब टपकना शुरू करेगी तब ठीक करवाएंगे, क्या प्रोग्राम है, पहले कराएंगे ना। विनाश कब होगा, क्या होगा, और मेरा अंतिम घड़ी कब आ जाएगी मुझे पता ही नहीं है, मैंने क्या तैयारी की है। तो वास्तव में हमारी पढ़ाई एक शब्द की है, आप कहेंगे बहन जी हमें तो ये इतनी बातें याद ही नहीं रहेंगी, चार सब्जेक्ट है, ज्ञान है, योग है, धारणा है, सेवा है, फिर हम क्या क्या करें, पहले ज्ञान पढ़ें या पहले योग करें, फिर पहले धारणा करें कि पहले सेवा करें। आप सब बातें भूल जाना, भूलना तो आसान है, भूलना आसान है या मुश्किल है? हमारी पढ़ाई एक ही शब्द की है और वो शब्द है कौन सा, कौन सा? हमारी पढ़ाई का शब्द है बिंदु, पॉइंट। बिंदु बन जाओ, बिंदु को याद करो, कोई भी बात आए उसको बिंदु लगाओ। ये तो आसान है या ये भी मुश्किल है? बिंदु बनो, मैं बिंदु आत्मा हूं। मान लो आज मेरा शरीर ठीक नहीं है, हाथ में दर्द है, कंधे में दर्द है, टांग में दर्द है, कोई बात नहीं, मैं बिंदु आत्मा प्रकृति जीत आत्मा हूं। ये शरीर क्या है? प्रकृति का बना हुआ है, प्रकृति भी मेरी सहयोगी है, साथी है। इस कंधे को भी, हमारी ध्यानी दादी थी ना, मुझे याद है हम छोटे थे कहा करती थी, ये शरीर भी एक घोड़ा है, घोड़े का मालिक क्या करता है, घोड़े की पीठ को थपथपाता है तो घोड़ा भी चलता है, तो ये भी घोड़ा है, इसको थोड़ा सा थपथपाओ, अच्छा आज यहां दर्द है, दवाई लगा लो, गोली खानी है तो खा लो, को चल अब चल तू बहुत अच्छा है, तेरे सहारे तो मेरी तपस्या है। लेकिन हम इस दर्द का स्वरूप बन जाते हैं। बाबा ने कहा तू प्रकृति जीत है, लेकिन हम प्रकृति के अधीन हो जाते हैं। तो मुझे क्या बनना है, क्या बनना है? बिंदु। याद हुआ माताएं, क्या बनना है? मैं बिंदु। और किसकी संतान हूं? सर्वशक्तिवान बिंदु की। और कोई भी बात हो गई, अच्छा कहा, बुरा कहा, लिया नहीं लिया, दिया नहीं दिया, हर बात को बिंदु, फुल स्टॉप, यही कहता है ना बाबा, फुल स्टॉप। एक बार अव्यक्त बाबा ने कहा था, बच्चे सीधी लाइन खींचना भी मुश्किल है, कई बार टेढ़ा हो जाता है, हाथ हिल जाता है, क्वेश्चन मार्क लगाना भी मुश्किल है, लेकिन सबसे आसान क्या है? छोटे बच्चे को भी आप पेंसिल दे दो, वो भी यूं 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 करके बिंदु लगा देगा। तो आप बिंदु नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते? तो हमारा जो जीवन है, हमें बाबा ने जो ज्ञान दिया है, हमें बाबा ने जो योग सिखाया है, ये सचमुच इतना गहरा है। ऐसे ना समझो हम तो कोई वेद शास्त्र थोड़ी पढ़े हुए हैं, बहन जी ये फलाना इतना वेद, हम प्रभावित हो जाते हैं, ये फलाना बहुत वेद शास्त्र पढ़ा हुआ है, संस्कृत का विद्वान है, संस्कृत का विद्वान हो सकता है, संस्कृत का उच्चारण कोई अच्छा स्पष्ट कर सकता है, लेकिन संस्कृति के वाहक हम बाबा के बच्चे हैं। संस्कृति समझते हो ना, हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर कौन सी थी? दैवी संस्कृति। संस्कृत का उच्चारण कोई बहुत अच्छा कर सकता है, गीता के श्लोक पढ़ेगा एकदम एक्यूरेट बोलेगा, लेकिन आचरण, गीता में है मन मना भव, काम महाशत्रु है, क्रोध महाशत्रु है, वो प्रैक्टिकल में कौन लाएगा? बोलने वाला नहीं, बाबा ने हम बच्चों का आचरण सबसे ऊंचा बनाया है। तो कभी भी ये ना सोचो हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं है ना, हम तो अंग्रेजी नहीं बोल सकते ना, लेकिन हम अपने मन और बुद्धि को एकाग्र कर सकते हैं। हमारे अंदर दैवी गुणों की धारणा है, हमारा मन और बुद्धि एकदम शांत और शीतल है, यही हमारी ईश्वरीय पढ़ाई है। यही बिंदु 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 हमें लगाना है और बिंदु बन करके मनुष्य से देवता बन जाना है। ठीक है, बनेंगे सब बिंदु? बिंदु बनेंगे? बिंदु बनेंगे तो हमारा हेल्थ भी ठीक रहेगा। बिंदु बन के भोजन करो, कितना चाहिए, स्वाद के पीछे नहीं भागना है। सिंपल खाओ, सिंपल पहनो, सिंपल बोलो तो जीवन सर्वोच्च बन जाएगा। आजकल दुनिया में अगर मंदी है तो किसकी? पैसे की मंदी नहीं है, व्यापार में कोई मंदी नहीं है। तो आप कहेंगे मंदी कहाँ है बहन जी, आप जाके पूछ लीजिए। मंदी के दौर में मैं तो लोगों से पूछती हूँ, भाई मंदी है तो तुमने कार क्यों खरीदी? कहता बहन जी ये तो सब चलता ही रहता है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो क्या आपने कार चलानी कम की? कहते नहीं, ये तो चलेगी दौड़ेगी। अब तो मंदी किस चीज की है? मंदी पैसे की नहीं, मंदी बिजनेस की नहीं, लेकिन मंदी मनुष्य में पवित्रता की, दिव्यता की, नैतिकता की, चरित्र की है। और बाबा आकर हम बच्चों का यही ऊंचा उठाते हैं, हमें दिव्यता से भरपूर करते हैं, हमारे चरित्र को ऊंचा बनाते हैं, हमारे अंदर नैतिक मूल्य भरते हैं। प्रतिदिन हमें यही चेक करना है, हम बाबा के बच्चे ऊपर 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 जा रहे हैं, तब ये समझा जाएगा हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, तब हम स्टूडेंट हैं। तो हमारी ये जो बाबा की मुरली है, ये हम ब्राह्मणों की जान है, मुरली ब्राह्मणों का प्राण है, मुरली हमारे जीवन में प्रकाश है। आप एक मुरली को चाहे 10 दिन पढ़िए, तब तक पढ़िए जब तक उसकी धारणा ना हो जाए, तो आप देखो आपके अंदर कितनी खुशी कितनी शक्ति आएगी। तो ये मुरली शक्तिदायिनी है, एक मुरली को ही बस मुरली के दीवाने बन जाए तो ज्ञान योग धारणा सेवा सब स्वतः हो जाएगा। ओम शांति। अब चलो बाबा की याद में, अब तो याद सहज हो गई या नहीं हुई? कैसे बैठेंगे याद में? कैसे बैठेंगे? बिंदु बन के बैठो, एकदम बिंदु बन जाओ। बस मैं आत्मा बिंदु, और किसके सामने हूँ? बिंदु बाबा जो सर्वशक्तिवान है। अलर्ट होके बैठो, छोड़ो कुर्सियों का सहारा, सोफे का सहारा, अलर्ट होके बैठो। बाबा शक्ति दे रहा है, शक्ति लो।
हम तुम्हें हो हमारे। किसी भक्ति का फल पाए, पास तुम्हारे इतने आए।
Come on.